your time is...
1 hour. We can take up to 1 hour now.
All right, brother. Thank you.
Good morning, brethren. It's a great privilege for me to be here and a great privilege to be invited to speak at this conference.
Shubhprabhat bhaiyo, ye mere jeevan mein bada shubh avsar hai ki mujhe ye nyota mila hai ki aap logon ke beech mein aao, parmeshwar ke sandesh ko baant paun.
I'm looking forward very much to fellowship with you and getting to know you. Some of you I know and others I don't. We trust we will get to know each other through the week, God willing.
Aane wale dinon mein aapke saath अच्छी संगति मुझे प्राप्त होगी, ये मेरा विश्वास है. कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं जानता हूं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं जानता हूं, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे.
Now let's turn to the word of God, please. That's our purpose of being here.
आइए हम पवित्र शास्त्र की ओर अपने ध्यान को ले जाएंगे.
I'd like you to read with me in Revelation chapter 19.
हम सब साथ मिलकर प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में से देखेंगे. प्रकाशित वाक्य 19.
And in Revelation chapter 19, there is a distinct break in the narrative between verses 8 and 9.
और 19वें अध्याय के 8 और 9 पद को हम ध्यान देंगे, तो वहां पर एक प्रकार से रुक कर कुछ बात कही गई ऐसा लगता है.
Verse 8 concludes things which John has had a vision of as happening in heaven.
पद 8 के अंत में यूहन्ना ने स्वर्ग में जो दर्शन को देखा उसके बारे में हम पाते हैं.
These first 8 verses are, if you like, we are peeking behind the curtain that is about to be raised to reveal the Lord Jesus Christ in glory.
यहां पर अगर हम ध्यान देंगे तो पद 1 से लेकर 8 तक हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वो कर्टन खुलने वाला है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को उसकी सारी महिमा में हम देखने जा रहे हैं.
Things are happening in heaven in these first 8 verses preparing for the point at which heaven is going to be opened and the Lord Jesus appear.
और पद 1 से लेकर 8 तक हम देखते हैं, हमारा ध्यान उस बात की ओर आकर्षित होता है कि स्वर्ग में क्या तैयारियां हो रही है जिसका वो दरवाजा खुलने वाला है और हम उन बातों को देख पाएंगे.
Particularly the marriage of the lamb has taken place in the father's house.
विशेष करके मेमने का विवाह पिता के भवन में होने वाला है.
And the time has now come for the bride to be revealed to the guests who are going to be at the marriage feast.
और समय आ गया है कि विवाह के उस भोज में वधू को पेश किया जाए जो मेहमान आए उनके सामने.
And for the Lord Jesus to be revealed in His glory.
और प्रभु यीशु मसीह को की सारी महिमा में वहां पर हम देख पाएंगे.
So everything is poised now in heaven at the end of verse 8, ready for heaven to be opened and the great millennial dawn to come.
और इस प्रकार आठवें अध्याय जैसे समाप्त होता है स्वर्ग में उस सारी महिमा और प्रभु यीशु मसीह के हजारों वर्ष की जो राज है उसका द्वार खुलने जा रहा है.
But there's a slight pause.
उसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक छोटा सा रुकावट आता है.
Everything is ready at the end of verse 8.
8 में सब कुछ समाप्त हो गया.
And in verse 11, John sees heaven opened.
और पद 11 में यूहन्ना ने आकाश या स्वर्ग को खुला हुआ देखा.
But in between those verses, somebody speaks to him.
और उन पदों के बीच में कोई यूहन्ना से बात करता है.
It is an angel that speaks to him.
और एक स्वर्गदूत ने उससे बात किया.
But John doesn't introduce him as such.
और यूहन्ना ने उसका किसी प्रकार का परिचय तो नहीं दिया है.
He just says in verse 9, and he said unto me, write.
वो बस इतना लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा लिख.
It's as though, well, it's almost like when Mary came to the tomb.
वास्तविक रूप से हम उस दर्शन को यहां पा सकते हैं जैसा अनुभव मरियम का था जब वो उस प्रभु के कब्र के पास आई.
When Mary came to the tomb, she had a vision of angels who said, "Why seek ye the living among the dead?"
जब मरियम वहां पर प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास आए तो उसे स्वर्गदूतों का को देखा जो उससे कह रहे थे कि मरियों के बीच में जीवितों को तुम क्यों ढूंढते हो.
But she turned away from that vision.
और वो उस दर्शन से दूर चली गई.
Her interest wasn't in angels. Her interest wasn't in angels.
हाँ, उसकी जो रुचि है उन स्वर्गदूतों में नहीं थी.
Her interest was in Christ.
उसकी रुचि प्रभु यीशु मसीह में थी.
It seems amazing to us as humans that she would not be captivated by the sight of an angel.
हम जो मनुष्य हमके लिए बड़ी हमारे लिए बड़ी आश्चर्य का विषय है कि मरियम ने जब स्वर्गदूतों का दर्शन को पाया वो उसमें उसके मोह में नहीं फंस गई.
But her heart was occupied with Christ.
लेकिन उसका मन प्रभु यीशु मसीह में लगा हुआ था.
In the same way, John is enjoying this vision of the final preparations in heaven for the revelation of the Lord Jesus Christ.
इसी प्रकार यूहन्ना स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित किए जाने वाले दिखाई दे जाने वाले उस अंतिम तैयारियों का बातों को देख रहा था.
It is almost a distraction that this angel speaks to him.
वास्तविक रूप से जब ये स्वर्गदूत उससे बात करता है एक प्रकार से उसका ध्यान बढ़ जाता है.
So he just says, "He said unto me, write."
इसलिए वो इस प्रकार से कहता है कि उसने मुझसे कहा ये लिख.
But what this angel said was very, very true and very interesting.
और ये स्वर्गदूत ने जिन बातों को कहा बड़ा रोचक है.
We're not so much interested in verse 9, though we will read it now.
पर 9 को तो हम ज्यादा देखेंगे नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे.
He said unto me, "Write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb." And he said unto me, "These are the true sayings of God."
फिर उसने मुझसे कहा लिख, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित है. उसने मुझसे कहा यह परमेश्वर के सत्य वचन है.
And I fell at his feet to worship him.
तब मैं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा.
And he said unto me, "See thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus."
परंतु उसने मुझसे कहा ऐसा ना कर, मैं तो तेरा और तेरे उन भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की साक्षी में स्थिर है.
Worship God.
परमेश्वर की उपासना कर.
For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है.
What is the purpose of us being here this week?
हम यहां पर एक सप्ताह बिताने के लिए आए, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है?
Through the goodness of God and the exercise and administrative labors of our brethren, we are all here.
परमेश्वर की भलाई और करुणा के कारण और हमारे भाइयों के मेहनत और इच्छा के कारण हम सब यहां पर हैं.
The subject is biblical prophecy.
और जो विषय वस्तु हम सीखने जा रहे हैं वो भविष्यवाणी है.
What are we seeking to get out of this?
हम जब यहां पर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इसमें से क्या प्राप्त करना चाहते हैं?
What is the purpose of prophecy?
ये भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या है?
It fulfills many purposes, really.
ये भविष्यवाणी के विषय में जब अध्ययन करते हैं तो ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति को हम पाते हैं.
A wonderful purpose of prophecy is to give us unshakable confidence in the Word of God.
भविष्यवाणी का एक प्रमुख उद्देश्य है कि परमेश्वर के वचन में हम स्थिरता को प्राप्त करें.
Some 3/4 of the scriptures, when they were written, were prophetic.
पवित्र शास्त्र के 3/4 भाग जो लिखा गया है वो भविष्यवाणी से संबंधित है.
And which of us has not marveled at the accuracy of those prophecies which have already been fulfilled?
और हम में से ऐसा कौन है जो यहां बैठा है जो भविष्यवाणी अभी तक पूरी हुई है, उन बातों को वो कितना सही पूरा हुआ है विचार करके आश्चर्य से ना भर जाता हो.
We could spend a week thinking just of the prophecies that were exactly fulfilled in those hours when our beloved Savior died at Calvary.
और हम यहां पर एक हफ्ता इसी बात को सीख कर बिता सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे तब जो भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरा हुआ है.
Not just the accuracy that God knows the end from the beginning.
और उसमें जो सत्यतया कितना सही ढंग से शुरू से लेकर आखिरी तक ये पूरा हुआ, इतना ही नहीं.
But that everything is under his sovereign control.
इतना ही नहीं कि हम पाते हैं कि सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर के सर्वाधिकार नियंत्रण के आधार पर हुआ है.
Did not Zechariah prophesy hundreds of years before the Savior came?
क्या जकरिया ने प्रभु यीशु मसीह के आने के कितनों वर्ष पहले प्रभु के बारे में भविष्यवाणी की?
Give me my price.
मेरे कीमत को दो, बताओ.
And he says, they gave me my price. It was 30 pieces of silver.
और उसने कहा उन्होंने मेरी कीमत लगाई कि बोली लगाई वो था 30 चांदी का सिक्का.
And after hundreds of years, when the Savior came, and that prophecy would be fulfilled.
और सदियों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आए और वो भविष्यवाणी पूरी हुई.
And Judas went to negotiate with the priests and the Pharisees the price of betrayal.
और यहूदा इस्करियोती वहां पे फरीसी और महायाजक के पास गया ताकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में मोल भाव कर पाए.
He negotiated for 30 pieces of silver.
और उसने मोल भाव किया और 30 चांदी के सिक्के में हमारे प्रभु को भेज दिया.
You see, those who have no faith in the word of God, they say coincidence.
और जिनको प्रभु यीशु जिनको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं वो कहते हैं कि ऐसा ही यथासंभव हो गया.
But those very rulers who hated Christ,
लेकिन वो अधिकारी जो प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते थे,
they knew that scripture.
लेकिन उनको परमेश्वर का वो वचन अच्छे से मालूम था.
They boasted in their knowledge of the Old Testament scriptures.
पुराने नियम के ऊपर उनके अधिकार पर वो गर्व करते थे.
So why didn't they negotiate for 29 pieces of silver?
तो जब उनको ये सत्य मालूम था उन्होंने 29 चांदी के सिक्कों में उस मोल भाव को तय क्यों नहीं किया?
Or 31?
या 31 चांदी के सिक्कों में?
Because no man can thwart prophecy.
इसका कारण यह है कि परमेश्वर की भविष्यवाणी को कोई भी मनुष्य रोक नहीं सकता.
They had to negotiate for 30 pieces of silver.
उन्हें 30 चांदी के सिक्कों में ही उसके बारे में मोल भाव करना था.
And so there is not only the thought of prophecy foretelling things with great accuracy.
इसलिए जब हम भविष्यवाणी को देखते हैं भविष्य की बातों को बिल्कुल सही तरीके से सही माप में उसे प्रस्तुत करना ही इतना ही नहीं.
But the overruling sovereign control of God.
लेकिन हमारे परमेश्वर का इन सारी भविष्यवाणी के ऊपर जो सर्वाधिकार है अथॉरिटी उसको हम देखते हैं.
In John chapter 19.
योहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में
we view with holy gaze the Lord Jesus a solitary man.
हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उसकी महिमा में एकांत रूप में हम पाते हैं.
He is handed over to brutal Roman soldiers to be the subject of their mockery and their scorn.
हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूर रोमी सिपाहियों के हाथ में दिया गया ताकि उसकी निंदा की जाए उसकी उपहास की जाए.
Delivered over to the whole band of them. The whole band of soldiers.
और वहां पर सिपाहियों की पूरी पलटन ही थी.
Maybe 130 in number.
हो सकता है 130 उनकी संख्या है.
Coarse men who with the Savior in the midst brutalized him.
कठोर पुरुष जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को अपने बीच में रखकर उसकी निंदा की उसे सताया.
At the beginning of his public ministry, the Lord Jesus was 40 days and 40 nights in the wilderness.
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के आरंभ में 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में बिताया.
And the scripture says he was with the wild beasts.
और पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि वह जंगली जानवरों के बीच में था.
After 40 days and 40 nights he came out of the wilderness.
40 दिन 40 रात के बाद वो मरुस्थल से बाहर आया.
There was not one tooth mark upon him.
और उसके ऊपर एक भी दाग हम नहीं पाते.
Not one scratch of a claw.
या किसी जानवर के द्वारा उसके ऊपर उनके नाखूनों के चिन्हों को नहीं पाते.
But the Savior spent just a few hours amongst the company of his created men.
लेकिन उद्धारकर्ता ने जब अपने सृष्टि के सामने कुछ समय बिताए तो
and they beat him until he was unrecognizable as a man.
उन्होंने उस पर ऐसा अत्याचार किया कि उसे देखो तो मनुष्य समान नहीं दिखता.
Was man given complete freedom to vent all his hatred and rebellion against God on this man?
क्या मनुष्य को यह सारा अधिकार दिया गया था कि मनुष्य रूप में आए हुए इस परमेश्वर के ऊपर वो इतने अत्याचार और घृणित कामों को करे?
As things come to their conclusion in John chapter 19.
और यूहन्ना उसके 19वें अध्याय में उसके समाप्ति की ओर आते हैं.
And they have stripped him.
और हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उसके वस्त्र को उतार दिया.
And they've torn the hair from his face.
और उसके दाढ़ी को उन्होंने नोच कर बाहर निकाला.
And they've scourged him.
और उन्होंने उसको मारा.
And they've adorned him with a crown of thorns.
और उसके सर पर कांटों का मुकुट को रखा.
John simply records this.
और यूहन्ना इस प्रकार से उसके बारे में कहता है.
These things therefore the soldiers did.
ये सारी बातें इसलिए सिपाहियों ने किया.
These things therefore the soldiers did.
ये सारी बातें इसलिए सिपाहियों ने किया.
Theirs is the responsibility.
जिम्मेदारी उनकी है कि उस काम को करें.
But there was a controlling hand.
लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण रखने वाला एक हाथ था.
They could crown him.
वो उस पर कांटों का मुकुट रख सकते थे.
That was prophesied.
क्योंकि इसकी भविष्यवाणी हुई है.
They could strip him.
वो उसके वस्त्र को निकाल सकते थे.
That was prophesied.
क्योंकि वो भविष्यवाणी में लिखी हुई है.
They could put him to an open shame.
और वो उसको खुल्लम खुल्लम तमाशा बना सकते थे.
That was prophesied.
क्योंकि इसके बारे में भी भविष्यवाणी है.
But when they came to break his legs.
लेकिन जब उन्होंने उसके पांव को तोड़ने के लिए आया.
They couldn't do that.
वो उसके पांव को तोड़ नहीं पाए.
Why?
क्यों?
Because it had been prophesied, a bone of him shall not be broken.
क्योंकि ये भविष्यवाणी किया गया था उसके बारे में कि उसके शरीर के हड्डी तोड़े नहीं जाएंगे.
They would gamble for his garments.
उन्होंने उसके वस्त्र के लिए उन्होंने बोली लगाई.
They would do that because it was prophesied.
उन्होंने ऐसा किया वो करेंगे क्योंकि इसके बारे में भविष्यवाणी है.
But when they would simply cast his body onto the rubbish heap of the city.
लेकिन जब उनके पास यह अधिकार था कि उसके शरीर को उस कचड़ों के ढेर पर जो शहर के बाहर था डाला जाए.
They couldn't do that.
उन्होंने वो उस काम को नहीं कर पाए.
Because many hundreds of years before Isaiah had written.
क्योंकि हजारों सदियों पहले यशायाह ने ऐसा लिखा था.
Men will make his grave with the wicked.
मनुष्य उसके जो कब्र है दुष्टों के साथ लगाएंगे.
But he will be with the rich in his death.
लेकिन उसके अंत में वो धनियों के साथ रहेगा.
So Joseph of Arimathea came on the scene.
इसीलिए अरिमथिया का यूसुफ को हम वहां पर पाते हैं.
The body of the Savior was placed in a new tomb where never before was man laid.
और हमारा हम जानते हैं हमारे उद्धारकर्ता के शरीर को एक नए कब्र में रखा गया था जहां पर किसी और मनुष्य का शरीर नहीं रखा गया था.
What a confidence we have in the word of God.
देखिए परमेश्वर के वचन में हम कितना धीरज धर सकते हैं.
Not only in the accuracy of prophecy.
परमेश्वर का वचन उसके कितना सत्य है उसकी भविष्यवाणी कितना सत्य इतना ही नहीं.
But in the supremacy of the sovereign hand of God who sees that everything is done according to that word.
लेकिन हम देखते हैं सर्वोच्च परमेश्वर का सर्वाधिकार से भरा हुआ हाथ इन सारे वक्तों के ऊपर है कि सारी बातें उसके कहे अनुसार पूरा हो.
By God's grace we're handling those things this week.
और परमेश्वर की दया के अधीन होकर हम उन बातों को बस देख रहे हैं.
We're handling the word of God.
हम परमेश्वर के वचन से वचन को देख रहे हैं.
These matters have been made over many generations almost a battleground amongst brethren.
ये सारी बातें कई सदियों में विश्वासियों के बीच में एक युद्ध के क्षेत्र में इसकी परिभाषा की गई है या भविष्य सच्चाइयों को बताया गया.
And there is something about the carnal mind that loves to debate and to argue and I want to prove my point.
और शारीरिक मनुष्य की ऐसी एक भावना एक इच्छा होती है कि इन बातों पर वाद विवाद में चला जाए.
Brethren, through this week we will not argue about any of these things.
प्रिय भाइयों इन से सप्ताह में हम किसी भी बात पर वाद विवाद करने नहीं जा रहे हैं.
Discuss them, yes.
उनके बारे में हम विचार करेंगे.
And compare scripture with scripture, yes.
और वचन को वचन के आधार पर तुलना कर देखेंगे ये सच है.
It would be a tremendous surprise if so many of us all had exactly the same views on so many things.
और ये एक तो बहुत बड़ी भलाई होगी अच्छी बात होगा हम सारे एक ही विचार के साथ इन बातों को देखें.
But we are handling scriptures which are showing us the unfolding purpose of God.
लेकिन हम परमेश्वर के शास्त्र को इस संदर्भ में विचार करेंगे विमर्श करेंगे जहां पर परमेश्वर की छुपी हुई बातें हमारे सामने खुलकर आए.
And we will give it due reverence, I'm sure. And remember that we are handling God's word.
और मैं आशा करता हूं कि जब हम वचनों को मनन करेंगे ध्यान करेंगे उसको सारे आदर और भक्ति के साथ उसका उपयोग करेंगे समझे कि यह परमेश्वर का वचन है.
Why prophecy?
भविष्यवाणी क्यों?
If it was only for that reason we have just been thinking about, it would be a wonderful reason.
अगर सिर्फ इसी कारण से हम इन बातों को विचार कर रहे होते तो बहुत अच्छा कारण होता.
For if so much of scripture has been so perfectly fulfilled.
क्योंकि अगर इतने सारे वचन इतने सही ढंग से पूरा हुआ है.
It would be a fool who didn't believe that the rest of scripture will be as accurately fulfilled as well.
तो वह एक मूर्ख होगा जो ये विश्वास नहीं करता है कि बाकी जो वचन है वो परमेश्वर का वचन नहीं है.
But no, that's not the main purpose of prophecy.
ये भविष्यवाणी के सीखने का मुख्य उद्देश्य नहीं है.
Another great purpose of prophecy would be explained to us by Peter in his second letter.
भविष्यवाणी के बारे में दूसरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो पत्रस ने अपनी दूसरी पत्री में हमें याद दिलाया है.
As Peter considers all the great events of the past and of the future in relation to the judgment of God.
जब पत्रस ने पहले और वर्तमान में परमेश्वर के न्याय के संबंध में जो बातों को स्पष्ट करना चाहा है तब.
And the Spirit of God takes him in thought from the destruction of the world by water in the days of Noah.
तब परमेश्वर की आत्मा उसे उन दिनों की ओर ले जाता है जब संसार का के ऊपर पानी के द्वारा जल के द्वारा न्याय हुआ था.
To the destruction of the world by fire at the end of the day of the Lord.
और परमेश्वर के प्रभु के दिन के अंत में कैसे जगत का आग के द्वारा न्याय किया जाएगा.
And as Peter by the Spirit views those great events that are going to take place.
और पत्रस उस भूतकाल के और वर्तमान काल भविष्यकाल में होने वाली घटनाओं को के ऊपर अपने विचार को लाता है.
He says in verse 11 of 2 Peter 3.
दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसके 11वें पद में वो इस प्रकार से कहता है.
Seeing then that all these things shall be dissolved.
जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर हैं.
What manner of persons ought ye to be?
किस प्रकार के लोग हमें होना चाहिए.
In all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved and the elements shall melt with fervent heat.
तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए. तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए. उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएगा.
Verse 14.
पद 14.
Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless.
इसलिए प्रियो जब तुम इन बातों की आस लगाए हो प्रयत्न करो कि तुम प्रभु द्वारा शांति में निष्कलंक और निर्दोष पाए जाओ.
What's Peter saying?
पत्रस क्या कह रहा है?
He's saying that a knowledge of divine purpose by God's people.
वो कहता है कि परमेश्वर के उस ईश्वरीय ज्ञान जिसके द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होने वाले हैं.
A knowledge of prophetic events.
और भविष्यवाणी के जो ज्ञान है.
Should have a profound moral effect upon your life and mine.
ये सारी बातें हमारे नैतिक जीवन पर हमारे जिंदगी पर इसका एक बहुत बड़ा असर होना चाहिए.
There will be something wrong, brethren, if we go away at the end of this week and we have not been touched in our hearts and in our consciences by the things that we have considered together.
प्रिय भाइयों हम एक सप्ताह के बाद जब यहां से जाएंगे हमारे जीवन में हमारे हमारे अंतरात्मा को हमारे मन को अगर किसी बात ने नहीं छुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है.
Peter says the purpose of prophecy is not to inflate the intellect. It's not just to be able to boast about how much we know.
पतरस कहता है कि ये भविष्यवाणी के विषयों को हम इसलिए नहीं सीखते कि हम अपने ज्ञान में गर्व करें.
But as we look around the world in which we live and realize it is all going to be destroyed ultimately.
लेकिन हम हमारे चारों ओर की दुनिया को जब देखेंगे हमारे मन में यह विचार आए कि ये सब एक दिन नष्ट होगा.
That in his purpose God has fixed certain times and events.
कि परमेश्वर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ समयों और कुछ घटनाओं को नियुक्त किया है.
Peter refers to Paul's writings.
पत्रस प्रेरित पौलुस के लिखे हुए बातों को भी हमारे सामने लाता है.
And you remember when Paul preached in Athens, he said to the men of Athens in Acts 17.
और प्रेरित पौलुस जब अथने में परमेश्वर के वचन से कह रहा था 17 अध्याय में तो उसने इस प्रकार से कहा था.
God hath appointed a day in the which he will judge the world.
परमेश्वर ने एक दिन को नियुक्त किया है जब वह सारे पृथ्वी पर अपने न्याय को दिखाएगा.
He has appointed a day.
उसने उसके लिए एक दिन को नियुक्त किया है.
A fixed time.
एक निश्चित समय को नियुक्त किया है.
Nothing will move it.
और कोई भी बात उसको दूर नहीं कर सकती.
I often joke about IST, Indian Standard Time.
मैं कई बार मजाक में इस प्रकार से कहता हूं IST, Indian Standard Time.
IST really means Indian Stretchable Time.
IST का मतलब है Indian Stretchable Time या समय जिसको हम खींच सकते हैं.
It's just a feature of your lovely country.
ये आपके अच्छे इस देश का एक विशेष गुण है.
But there's no stretchable time with God.
लेकिन परमेश्वर का ऐसा खींचने वाला कोई समय नहीं है.
Sometimes at home our brethren speak of God lengthening out the day of grace.
कई बार भाइयों को इस प्रकार मैं कहते हुए सुनाओ कि अनुग्रह के दिनों को प्रभु बढ़ा रहा है.
We know what they mean, but God doesn't lengthen out the day of grace.
हम जानते हैं उनका मन में क्या विचार है, लेकिन परमेश्वर कभी भी अनुग्रह के दिनों को खींचता नहीं है, बढ़ाता नहीं है.
It's fixed.
वो निश्चित किया गया है.
And the day in which he will judge the world is fixed.
और जिस दिन वो जगत का न्याय करेगा वो दिन निश्चित किया गया है.
That means that every day we wake to a new day by the grace of God.
इसका ये अर्थ हुआ कि हर सुबह एक नया दिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण देखते हैं.
We are a day nearer heaven and home.
एक ऐसा दिन है जहां हमारा घर स्वर्ग में हो.
And the ungodly amongst whom we live are a day nearer that fixed day when God will judge the world.
और जो अविश्वासी हमारे चारों ओर रहते हैं उनके लिए वो दिन करीब है जो नाश की ओर जा रहे हैं.
If we don't go away from this week with a much deeper sense of moral responsibility to God and our fellow men.
अगर इस सप्ताह के अंत में हम यहां पर नैतिक मूल्यों में के बारे में विचार करते हुए जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम यहां से नहीं जाएंगे.
Then there'll be something wrong.
तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलती है.
Matters of prophecy might have filled our heads.
ये भविष्यवाणी के बहुत सारे ज्ञान सारे हमारे दिमाग में भर गए होंगे.
But if they haven't touched our hearts, then they've been wasted.
लेकिन अगर उसने हमारे हृदयों को स्पर्श नहीं किया तो एक सप्ताह व्यर्थ में गया.
So Peter says that there must be a profound moral effect upon the life of the believer that comes from a knowledge of these divine things.
इसलिए पत्रस हमें याद दिलाता है कि विश्वासियों के नैतिक मूल्यों में आत्मिक जीवन में एक प्रभाव इन बातों को सीखने के द्वारा होना अति आवश्यक है.
What manner of persons ought ye to be in all holy behavior and godliness?
और सारे सच्चाइयों में पवित्रता में और व्यवहार में हम किस प्रकार के मनुष्य या पुरुष बनना है?
That's a very good purpose of prophecy.
ये भविष्यवाणी का एक बहुत अच्छा उद्देश्य है.
But it's not the main purpose of prophecy.
लेकिन भविष्यवाणी का ये मुख्य उद्देश्य नहीं है.
Why has God given us tremendous detail about some things that are going to happen?
परमेश्वर ने भविष्य में होने वाले इन सत्यों के बारे में इतने विवरणात्मक रूप से हमारे हमें क्यों दिया है?
And yet left out of the record certain big pictures of the jigsaw that we need.
और इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र में दृश्य चित्रों के द्वारा बहुत सारी बातों को भी हमें समझ में नहीं आ रहा इस प्रकार से रखा हुआ है.
It's for this simple reason.
इसका एक कारण है.
That God's purpose in prophecy is not to outline a program. God's purpose in prophecy is not to outline a program.
हाँ, परमेश्वर का भविष्यवाणी से यह उद्देश्य नहीं है कि हमारे लिए एक प्रोग्राम की एक रूपरेखा तैयार करके दे दे.
God's purpose in prophecy is to reveal a person.
परमेश्वर की भविष्यवाणी के द्वारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो एक व्यक्ति का हमसे परिचय करवाए.
This last great book of the Bible.
और पवित्र शास्त्र के इस अंतिम महान पुस्तक में.
How does it begin?
उसका आरंभ कैसे होता है?
The revelation of God's program for future events.
और वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के जो भविष्य की बातें उसका प्रकाशन.
No, it doesn't begin like that.
ऐसा नहीं.
The revelation of Jesus Christ.
या लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशन.
That's God's purpose.
ये है परमेश्वर जो.
And that is confirmed by this angel that speaks to John in Revelation 19.
और इसी बात को इस प्रकाशित वाक्य 19 में जो स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा उसने उसको उस बात को पूरा किया है.
The spirit of prophecy.
भविष्यवाणी की जो आत्मा है.
The purpose of prophecy.
और भविष्यवाणी का जो उद्देश्य है.
The thrust of it.
और उसके पीछे जो जोर लगाया जा रहा है.
The life beat within the whole matter of biblical prophecy.
और पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी की जो हृदय की जो आवाज को हम सुनते हैं.
What is it?
वो क्या है?
He said it is the testimony of Jesus.
वो कहता है कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन या गवाही है.
And immediately we pause.
और उसके बाद हम रुक जाते हैं.
We are struck by the singular use of the name of this blessed man.
और वहां पर हम एक वचन में और एक काम के लिए इस अनुग्रह से भरे हुए पुरुष के नाम को हम पाते हैं.
बिकॉज पीटर प्रीच्ड इन द अर्ली डेज ऑफ द चर्च.
पत्रस ने कलीसिया के आरंभ के दिनों में प्रचार किया था.
दिस ही वाज टॉकिंग टू द मेन ऑफ इज़राइल.
और वो इसराइली पुरुषों को देखकर इस प्रकार से कहता
है, दिस सेम जीसस,
यही यीशु.
That's how you knew him, he says.
वो कहता है कि तुमने पतरस और इसराइलियों से कहता, तुम उसे ऐसा जानते थे.
This same Jesus.
वही यीशु.
Jesus of Nazareth.
जो नासरत का है.
Jesus the humble carpenter.
वो यीशु जो बढ़ाई है.
Jesus the unschooled man who knew far more than all his teachers.
इस यीशु वह जो कहीं भी वचन का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उनके ज्ञानियों के बीच में है.
This same Jesus whom you despised.
यही यीशु जिसका तुमने तिरस्कार किया है.
Whom you hated.
जिससे तुमने घृणा की.
Whom you rejected and crucified.
जिसको तुमने त्याग दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया.
This same Jesus.
यही यीशु.
God has made both Lord and Christ.
उसी को परमेश्वर ने प्रभु और मसीह होकर ठहरा दिया है.
That's why, brethren, unless there are specific reasons for doing it, we don't just talk together about Jesus.
इसीलिए प्रियजनों, इस प्रकार की बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया, इसके पीछे विशेष कारण है.
We give him the titles that God has given him.
हम उसे वो नाम दे जैसे परमेश्वर ने नाम दिया है.
He is not Jesus our brother.
वो सिर्फ यीशु नहीं है.
He is the Lord Jesus Christ.
वो प्रभु यीशु मसीह है.
All that we would see that lovingly we acknowledge the titles which God has given to this blessed man.
इसलिए जब इन बातों को देखते हैं, बड़े प्रेम के साथ परमेश्वर ने अपने इस प्रिय पुरुष को जो नाम दिया है, उन बातों को बड़ा ध्यान से हम देखते हैं.
He is our Lord Jesus Christ.
वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है.
Sometimes,
कभी-कभी,
as at the beginning of this book, we read Jesus Christ.
जैसे हमने इस पुस्तक के आरंभ में यीशु मसीह नाम को देखा.
The revelation of Jesus Christ.
यीशु मसीह का प्रकाशन.
And usually when we read the words in that order, we're thinking about the man who was here, who is now glorified in heaven.
और जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं, प्रभु के बारे में, तो हम उस पुरुष को देखते हैं जो यहाँ पर था, और वो महिमा में रहने वाले उस पुरुष को देखते हैं.
So this book is about the manifestation of a man who is now crowned with glory in heaven.
इसलिए इस पुस्तक में उस पुरुष के प्रकटीकरण को, उसकी महिमा को देखते हैं जो आज स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा
है. Sometimes we read of Christ Jesus.
कई बार हम पढ़ते हैं मसीह यीशु.
Christ Jesus came into the world to save sinners.
मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए जगत में आया.
Thinking of the one divinely appointed and divinely anointed.
इसका ये अर्थ हुआ, वह हम जब विचार करते हैं उसके बारे में सोचते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नियुक्त किया गया और भेजा गया.
Who in wonderful grace took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men.
और परमेश्वर के अनुग्रह के दुख हम देखते हैं कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के बीच में आया.
Christ.
मसीह.
Jesus.
यीशु.
Jesus, the Christ.
यीशु जो मसीह.
To the church, the Lord Jesus Christ.
और कलीसिया के लिए वो प्रभु यीशु मसीह है.
But now this angel says to John.
अब इस स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा.
The spirit of prophecy is the testimony of Jesus.
कि ये जो भविष्यवाणी की जो आत्मा है, ये यीशु मसीह की गवाही है या प्रकाशन है.
It is concentrating deliberately, the Spirit of God is calling our attention to the man.
यहां पर परमेश्वर की आत्मा बहुत ही जोर लगाकर हमारे ध्यान को उस मेमने की ओर आकर्षित कर रही है.
The man who went to Calvary.
वह मनुष्य जो पुरुष जो कालवरी तक चला गया.
Thou shalt call his name Jesus.
तुम उसका नाम यीशु रखना.
For he shall save his people from their sins.
क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से बचाएगा.
In that sense, the Lord Jesus only has one name.
इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का अगर उस अर्थ में देखें तो एक ही नाम है.
His name is Jesus.
उसका नाम यीशु है.
He has many titles.
उसके बहुत सारे संबोधन के.
But now the Spirit of God concentrates on the name of the man.
लेकिन अभी इस वक्त परमेश्वर की आत्मा उस पुरुष के नाम पर अपने ध्यान को केंद्रित.
The whole purpose of prophecy.
सारी भविष्यवाणियों का उद्देश्य.
Is to testify of Jesus.
कि यीशु के बारे में प्रकाशन करे या गवाही दे.
इट इज टू अनफोल्ड गॉड्स पर्पस कंसर्निंग दिस मैन.
कि परमेश्वर का इस पुरुष के संबंध में क्या उद्देश्य है, उसको वो खोल कर रखे.
एंड टू अंडरस्टैंड दैट बेटर.
और उस सत्य को अच्छे से समझने के लिए.
वी नीड टू रियलाइज दैट गॉड्स पर्पस इन द फ्यूचर is founded upon events in the past.
इसलिए हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का भविष्य में जो उद्देश्य पूरे होने वाले हैं इसका आधारशिला हम भूतकाल में पाते हैं.
To appreciate more how the spirit of prophecy is the testimony of Jesus.
कि ये भविष्यवाणी का जो प्रकाशन है ये यीशु मसीह की गवाही है सत्य को जानने के लिए.
We need to go right back to the very beginning of things.
इसके लिए हमें आरंभ के विषयों के बारे में विचार करना जरूरी है.
And really right back to the beginning, before Adam.
और आदम के पहले के बातों को हम देखें.
You see, we know from the book of Job.
हम अय्यूब के पुस्तक में जानते हैं.
That when God called into being the heavens and the earth.
कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया.
When the events of Genesis 1 took place.
और उत्पत्ति के पहले अध्याय की कई घटनाएं उसमें संभव घटित हुई.
That there were angels, the stars, the sons of the morning, and they sang, says Job.
वहां पर अय्यूब कहता है कि जो सुबह के सितारे हैं जो परमेश्वर के पुत्र हैं उन्होंने गीत को गाया.
So angels were in existence, they're created beings, but they were in existence when the physical heavens and the earth were created.
इसलिए हम स्वर्गदूतों के बारे में जान ले कि जब ये पृथ्वी और आकाश बनाया गया था उस समय ये स्वर्गदूत थे.
We don't want to take time to be distracted by this, but let me just make my position clear on things.
इन बातों पर ज्यादा मैं अपने ध्यान को लाना नहीं चाहता, हमारे ध्यान हटा दो, आपके ध्यान को हटाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें रखना चाहूंगा.
And I genuinely don't know what the belief is here.
और यहाँ पर आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है ये मैं जानता नहीं.
But in my reading of the Bible, there is no gap between Genesis 1 verse 1 and 1 verse 2.
मेरे विचारों के अनुसार परमेश्वर के वचन के अध्ययन के अनुसार उत्पत्ति एक उसका एक और उत्पत्ति एक उसके दो इन दो पदों के बीच में कोई गैप या दूरी नहीं है.
Many able and godly teachers years ago felt that the new discoveries of science demanded a new look at Genesis 1.
कई परमेश्वर के दासों के मन में ये विचार आया कि विज्ञान के द्वारा जब नए नए खोज किए गए तो उत्पत्ति के बारे में हमारी व्याख्या या परिभाषा एक और बार हमें ध्यान देना होगा.
They took the correct view that genuine science will never contradict scripture.
उन्होंने कहा कि जो वास्तविक विज्ञान है वो कभी भी पवित्र शास्त्र के विरुद्ध में नहीं जाएगा.
I lean heavily on the word genuine.
मैं इसलिए कहता हूं जो वास्तविक है, जो बिल्कुल सही है.
Genuine science.
जो वास्तविक विज्ञान है.
Because the majority of science today is false.
क्योंकि अधिकांश विज्ञान जिसको आज हम देखते हैं वो गलत है.
It's false because of the basic assumption made according to Peter in his epistle.
और ये गलत इसलिए है क्योंकि पत्री में जो सत्य को हमारे सामने रखा उसके सामने ये विज्ञान गलत है.
Peter says that this they are willingly ignorant of.
पत्रस कहता है कि वो जानबूझकर जानते हुए इसके विरोध में बातें कर रहे हैं.
That's the word of science today.
विज्ञान आज ऐसा है.
It willingly, it deliberately represses the truth and the evidence that God once judged the world with a global flood.
वो सत्य को जानते हुए विज्ञान पृथ्वी पर आए हुए जल प्रलय के विरोध में बात कर रही है.
It says that every process we measure today has always gone on like that since the beginning of time.
और कहते हैं कि जो भी चीजों के द्वारा हम मापदंड को रख रहे हैं वो इस बातों को गलत साबित कर रही है.
So if we measure a process today,
इसलिए अगर हम कोई प्रक्रिया का आज कोई मापदंड रखते हैं,
particularly say the decay of some radioactive isotope,
और अगर हम सोचे कि जो रेडियो आइसोटॉप है जिसके द्वारा ये समय का, का निरीक्षण किया जाता है,
then we can draw a graph,
हम एक ग्राफ बना सकते हैं,
we can make a PowerPoint slide,
और PowerPoint slide बना सकते
हैं, we can project it back,
हम उसको वापस ले जा सकते हैं,
and we can say the earth is millions and billions of years old,
और हम कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है करोड़ों करोड़ों बरस पुराना है.
I simplify it, but that is their assumption.
लेकिन मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि ये बस विचार है, भान assumptions है.
Peter says that's exactly how they will think.
पौलुस कह रहा है कि यही बात ऐसे ही होगा.
But all things continue until now as they did from the beginning.
कि आज तक जो भी चल रहा है जैसे पहले से चलता रहा वैसे ही वचन के अनुसार चलेगा.
But Peter the fisherman,
लेकिन पतरस जो मछुआरा है,
who became a shepherd,
वो एक चरवाहा बन गया.
Peter says to the great scientific names of this world.
आज इस दुनिया के सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए वो कहता है
Men, you're wrong.
हे मनुष्यों तुम गलत हो
You are wrong because you willingly are ignorant of this fact that there's a God in heaven who intervenes in the ways of men.
वो इस प्रकार से मनुष्यों को वैज्ञानिकों को संबोधित करता है कि तुम जानबूझकर इस गलत बातों को पकड़े हुए हो ये भूलते हुए कि स्वर्ग का परमेश्वर मानव की हर बातों पर नियंत्रण रखा हुआ है
And there was a time when this world, the world that then was, being overflowed with water, perished.
एक समय ऐसा था जब यही पृथ्वी जल के द्वारा नीचे जल के समागम में चला गया था
But you don't want to believe that, he says.
पतरस कहता है तुम उसे पर विश्वास करना नहीं चाहते हो
Because you would have to confess God.
लेकिन एक दिन तुम्हें यीशु को प्रभु होकर स्वीकार करना होगा
So you see, brethren, I insist it is genuine science that never contradicts scripture.
इसलिए भाइयों मैंने ये कहा कि सत्य विज्ञान भी है जो वचन के कभी भी विरोध में नहीं जा सकता
Not science falsely so called.
लेकिन जो गलत वैज्ञानिक विज्ञान है वो इसका साथ नहीं
Well, many brethren thought there had to be, therefore, room in scripture for millions of years of time.
तो इसलिए अगर ऐसा होता तो वचन में ऐसा समय होना चाहिए था जहां पर करोड़ों वर्षों की इतिहास छुपा हुआ हो
This would account for the fossilized remains of things we are told are millions of years old.
और ये पुरानी बातें जो छिपी हुई है उनको हम पृथ्वी पर जो चट्टानों पर जो चिन्ह है त्रिचित्र है जो जमीन के नीचे गड़े हुए उन पर हम पा सकते हैं
So they say there was a prior creation in Genesis 1:1.
इसलिए वो लोग इस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि उत्पत्ति एक एक का जो सृष्टि है वो पहले है
There was some disaster,
उसके बाद कुछ भयंकर घटनाएं घट चुकी
The earth became without form and void.
और पृथ्वी बिना रूप का हो गया
And in that great gap, which can be as long as you want it to be,
और उस जो क्षण है जहां पर एक बड़ा गैप आ गया
There is chaos,
और वहां पर बहुत रूप से एक प्रकार का एक भयंकर परेशानियों को हम देखते
That's where all our fossils and things come from.
और उस मुश्किल के समय में ये सारे जो पृथ्वी के नीचे छिपी हुई जो फॉसिल्स है वो लोगों को मिली है
One verse of scripture is enough to dispel all of that.
ये सारी बातें झूठी हैं कर सिखाने के लिए पवित्र शास्त्र में एक वचन है
Romans chapter 5 and verse 12.
रोमियो की पत्री उसके पांचवें अध्याय उसके बारहवें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं
Wherefore, as by one man, sin entered into the world.
जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया
एंड डेथ बाय सिन
तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई
सो डेथ पास्ड अपॉन ऑल फॉर दैट ऑल हैव सिन्ड
उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया
हु वाज द वन मैन
वो कौन एक मनुष्य है वो कौन व्यक्ति है
आदम सो बाय दैट वन मैन आदम सिन एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड
इसलिए उस एक पुरुष आदम के द्वारा पाप इस पृथ्वी पर आया
Sin was exterior to the world.
और ये जो पाप है पृथ्वी के बाहर की बात
Now it entered into the world.
अब ये बाहर से मनुष्य में आ गई है
And when it entered, it brought something with it. It brought death.
और जब पाप जो बाहर से आई है ये मनुष्यों में आई तो वो मृत्यु को लेकर आई
And because we are all linked by birth with Adam, we are all subject to death.
और क्योंकि हम सब अपने जन्म के द्वारा आदम से जुड़े हुए हम सब मृत्यु के अधीन चले गए हैं
सो वी आर ऑल सब्जेक्ट टू डेथ एंड ऑल हैव सिंड इन आदम व्हेन आदम सिंड वी सिंड
उस प्रकार हम सब मृत्यु के अधीन है क्योंकि आदम ने पाप किया और आदम के वंश के होने के कारण हम भी मृत्यु के अधीन चले गए
दैट वर्स टेल्स मी दैट बिफोर सिन केम इनटू द वर्ल्ड नथिंग डाइड
ये वचन मुझे ये बात सत्य को बताता है कि पाप को और मनुष्य के बीच में आने के पहले किसी भी चीज की मृत्यु नहीं हुई है
It couldn't die.
वो मर नहीं सकते
Because sin is, death is a consequence of sin.
क्योंकि मृत्यु पाप के कारण आती है
Sin only came in when Adam disobeyed God.
और पाप कब आया जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया
So everything that ever died, died since Adam sinned.
इसलिए हरेक व्यक्ति हरेक बात जिसको मृत्यु प्राप्त हुई है वो आदम के पाप के बाद मिली है
Every fossilized remain of some creature has been since Adam.
और अगर हम कुछ जानवरों के उन चिन्हों को देखते हैं जो चट्टानों पर पाए जाते हैं जो आदम के पहले थे
So there's no need for a gap in Genesis 1:1.
तो फिर उत्पत्ति एक उसका एक की कोई आवश्यकता नहीं है
No scriptural suggestion at all of a prior creation that failed.
जो वचन उसके पहले जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले की सारी सृष्टि पराजित हो गई
But what we do, we look back to those early scriptures and we think of what must have happened exterior to the world for sin to have originated.
तो हम उन वचन के आधार पर उन पुरानी बातों की ओर जाएं, देखें कि पाप के प्रवेश के पहले क्या हुआ था.
Sin was in existence somewhere.
पाप कहीं ना कहीं था.
And by Adam it came into the world.
और आदम के द्वारा ये पाप जगत में आ गया.
Through a man.
एक मनुष्य के द्वारा.
So we go back to our Bibles and we look and we say, what could have happened to have caused all this?
इसलिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जाएं और देखें कि ये सारी अवस्था उत्पत्ति के एक उसके एक में कैसे हुई.
We don't have time for the detail, but you can make a note to look again at Ezekiel chapter 28.
इसके लिए हमारे पास समय अधिक नहीं है, लेकिन Ezekiel उसके 28वें अध्याय में कुछ सत्य छिपे हुए हैं.
Because there we have a glimpse of what was going on in the angelic creation.
और Ezekiel 28वें अध्याय में हम जो पहले के जो स्वर्ग दूतों की सृष्टि है उसमें क्या हो रही है उन घटनाओं को पाते हैं.
The angelic creation preceded the physical creation of the heavens and the earth.
और हम जानते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बनने के पहले एक सृष्टि हुई थी, वो था स्वर्ग दूतों की.
It had to in order for those angels to sing when the heavens and the earth were made.
और ये जब पृथ्वी और आकाश बनाई गई तब हम पाते हैं स्वर्ग दूतों ने पाप किया था.
Amongst all those various tiers of responsibility and power in the angelic realm, above them all, there was one. He was called Lucifer.
और इन इस स्वर्गदूतों की जो सेना है, हाँ सेना है, उनके जो स्तर हैं, उनका जो different levels है, स्तर है, उसमें एक सर्वोच्च था, जिसका नाम था लूसीफर.
And the description of Lucifer in Ezekiel chapter 28 is of a being whose appearance is like every precious stone.
और लूसीफर के बारे में जो विवरण Ezekiel 28वें अध्याय में पाते हैं, उसका विवरण इस प्रकार से किया गया कि पृथ्वी के सारे जो कीमती पत्थर हैं, उनके तुल्य वह दिखता.
He was the anointed cherub that covereth, so he is an angel in the immediate presence of God Himself. He's at the very throne room of heaven.
वह करूब था, यानी कि परमेश्वर के सिंहासन के करीब रहने वाला एक स्वर्गदूत था वो.
God dwells in light unapproachable.
और परमेश्वर ऐसे प्रकाश में रहता है जहां पर कोई जा नहीं सकता.
So the light of the throne of God was refracted through the being called Lucifer, so that he became a most glorious looking creature.
इसलिए परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर का जो प्रकाश है वो जब इस पर पड़ता था, उसका प्रकाश इस प्रकार से प्रतिबिंबित होता था कि उसके बारे में कहा गया कि ये प्रभु के सृष्टि में सर्वोच्च सृष्टि था.
But if you take the light away from a precious stone,
लेकिन अगर आप एक बहुमूल्य पत्थर में से उसके उस प्रकाश को निकाल लेंगे,
it just becomes a stone again.
वो सिर्फ एक पत्थर बन जाता है.
It doesn't have any inherent glory.
उस पत्थर में फिर कोई महिमा रह नहीं गई.
A precious stone is only at its best when exposed to a bright light.
हम सब जानते हैं बहुमूल्य पत्थर तभी कीमती कहलाया जाता है जब उस पर प्रकाश चमकता है और उसमें से कुछ निकलता है.
Then it seems to have a fire within itself.
हम जब ऐसे पत्थर को देखते हैं तो ऐसा लगता है उसमें से एक ज्वाला निकल रही है.
But it doesn't actually have that.
लेकिन उसमें वो है नहीं.
Although we're told that Lucifer was the anointed cherub that covereth, we're not told that he was the chief angel.
भले ही हम पढ़ते हैं कि वो एक अनुग्रह से भरा हुआ एक रूप था जो इस प्रकार से ढका गया था, लेकिन मुख्य करूब है करके हम नहीं देखते.
There is an administration, there are principalities and powers.
यहाँ पर हम शक्तियों को और सामर्थ्यों को हम पाते हैं.
He had a wonderful position of responsibility as far as his nearness to the throne of God was concerned.
और स्वर्ग के उन अधिकारियों और शक्तियों में उसे एक विशेष स्थान था जो स्वर्ग में बहुत ऊंचा स्थान था.
But we're not told that he was in charge of the angelic beings.
हम यहां ऐसा नहीं पढ़ते कि उसके बारे में कहा गया कि सारे स्वर्गदूतों के ऊपर उसका अधिकार था.
Now, again, time doesn't allow us to dwell there further, but see the way my mind is working now.
हमें इसके बारे में अधिक अध्ययन करने के लिए समय नहीं, लेकिन कुछ सत्यों को देखें.
This angelic being
ये स्वर्गीय जीव
witnessed the creation of the world
उसने पृथ्वी के सृष्टि के कार्यों को देखा
and witnessed on the sixth day the creation of man.
और छठवें दिन उसने मानव के सृष्टि को भी देखा.
How did man appear when God first made him?
जब मनुष्य को परमेश्वर ने पहले बनाया तो वो कैसा था?
Like every precious stone?
क्या सारे कीमती बहुमूल्य पत्थरों के समान?
No.
नहीं.
Man was made out of the dust of the earth.
मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया.
He is clearly a much lesser being.
वो बनाया गया तो बहुत छोटे रूप में बनाया गया.
The angel is a spirit being.
जो स्वर्गदूत है वो आत्मिक जीव है.
Lucifer is in the throne room of heaven.
वो लूसीफर जो है स्वर्ग के सिंहासन के करीब.
This is a being made of dust.
ये जो बनाए गए हैं ये तो मिट्टी से बनाए गए हैं.
He's on this little planet like a speck of dust in the universe that God has made.
इस पूरे ब्रह्मांड को देख ले. ब्रह्मांड में एक मिट्टी के कण के रेती के कण के समान बड़े एक पृथ्वी के गोलाई में वो रहता है.
But perhaps to the amazement of Lucifer.
लेकिन लूसीफर को अद्भुत करने वाली जो बात है.
Leading to the jealousy of Lucifer.
लूसीफर के जन्म के संबंध में उत्पत्ति के संबंध में देखते
हैं. We then find in Genesis 1.
हम उत्पत्ति एक में देखते हैं.
That God gave dominion to the man.
कि पृथ्वी पर सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया.
We read in Psalm number 8.
हम भजन 8 में पढ़ते हैं.
Thou hast made him a little lower than the angels.
तुमने उसे स्वर्गदूतों से कुछ छोटा ही बनाया है.
This psalm will be ascribed to Christ in Hebrews 2.
इब्रानी के पत्र दूसरा अध्याय में इसका संबोधन प्रभु यीशु मसीह के परिचय के रूप में किया गया.
But in Psalm 8 it is simply speaking of man.
लेकिन भजन 8 में वो सिर्फ मनुष्य के बारे में कहा गया है.
Made lower than the angels.
यहाँ कहा गया है कि वो स्वर्गदूतों से कुछ छोटा ठहराया गया है.
And thou hast crowned him with glory and honor.
और वहां ऐसा पढ़ते हो तूने उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है.
Not Lucifer.
लूसीफर को नहीं.
Him.
मनुष्य को.
The creature of dust.
जिसको मिट्टी से बनाया गया.
He has been given dominion and glory and honor.
उसको महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया परमेश्वर ने.
And does this glorious creature look down from heaven?
और ये महिमा से भरा हुआ स्वर्गीय इस स्वर्गदूत ने जब इस मनुष्य को देखा.
A spirit of pride arose in his being.
उसके मन में गर्व की आत्मा आ गई.
We read of it in Isaiah chapter 14.
हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं.
And he says, I will have it.
उसने कहा कि ये मुझे चाहिए.
Why should he have it?
ये मनुष्य को ये क्यों मिल गया?
I want the glory, the honor, the dominion.
मुझे प्रताप चाहिए, मुझे महिमा चाहिए.
We could say, Lucifer, you're a glorious being. We can hardly look upon you.
हम कह सकते हैं, लूसीफर, तू तो इतना महिमा से भरा हुआ है, हम तो तुझे देख नहीं सकते.
But he would say, yes, that's not my glory. That's the glory of the throne of God.
तब वो कहेगा, वो मेरी महिमा नहीं है, ये परमेश्वर का सिंहासन का महिमा है जो मेरे से प्रतिबिंबित.
I'm only reflecting and refracting that glory.
मेरी जो महिमा है ये प्रतिबिंबित हो रही है, फैल रही है.
God has given glory to the man himself.
लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा दी है.
And we learn this tremendous lesson.
और हम एक बहुत बड़े शिक्षा को पाते हैं.
That though angels are greater in power than any man,
कि किसी भी मनुष्य से स्वर्गदूत ताकतवर हैं, शक्तिमान हैं, फिर भी
God never subjected to angels the world that is to come.
लेकिन परमेश्वर ने कभी भी आने वाले पृथ्वी को किसी भी स्वर्गदूत के अधीन नहीं किया.
God's purpose is that a man will have dominion.
परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार होना है.
A man will have the glory.
मनुष्य को महिमा मिलना है.
And a man will have the honor.
और मनुष्य को सम्मान या प्रताप मिलना है.
And so the devil by subtlety.
इसलिए शैतान ने बड़े ही चालाकी के द्वारा.
He set out to obtain what he believed he should have.
उसने उस स्थान को प्राप्त करना चाहा जिसके बारे में वो सोचता था कि वो उसे मिलना है.
Not content with what he had.
जो कुछ उसके पास था उससे वो तृप्त नहीं था.
He coveted what God had given to the man.
लेकिन वो चाहता था, उसने इच्छा रखी, परमेश्वर ने मनुष्य को जो दी उस चीज को प्राप्त.
So he approached the man through the woman in the Garden of Eden in Genesis 3.
इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में अदन के बाग में वो स्त्री के द्वारा पुरुष के पास पहुंचा.
You know the account well.
हम जानते उस घटना को.
And what happened there in the garden was that the man.
और अदन के बगीचे में क्या हुआ कि मनुष्य ने
willingly surrendered to the devil,
अपने स्वेच्छा से शैतान के अधीन उसने अपने आप को कर दिया.
The dominion that God had given to him,
जो महिमा प्रताप और राज्य करने का अधिकार दिया था उसे शैतान के हाथों में दिया.
That's why the world now lies in the hands of the wicked one.
इसीलिए आज ये पृथ्वी शैतान के हाथों में.
He handed it all over.
मनुष्य ने सब कुछ दे दिया उसको.
And you know when the devil tempted the Lord Jesus in the wilderness.
आपको मालूम है कि उस मरुस्थल में प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा ली.
And he took him to an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them in a moment of time.
उसने यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पृथ्वी के सारे राज्यों को और उसकी महिमा को एक क्षण में दिखाया.
And he said to the Lord, "All these will I give thee if thou wilt just bow down and worship me."
उसने यीशु मसीह से कहा, ये सारी बातें मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे सामने गिर कर मेरी आराधना करेगा.
The Lord Jesus never disputed that they were the devil's to give.
यीशु मसीह ने कभी इस पर कोई बात विवाद नहीं किया कि ये शैतान का देने की बात है.
They were the devil's to give.
ये सारी बातें शैतान के अधिकार में है.
This whole world and its system lies in the hands of the evil one.
ये सारी पृथ्वी और इसकी सारी बातें शैतान के हाथों में.
And one of the reasons the Lord Jesus went to Calvary was to win it all back.
प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर इसीलिए चले गए कि वो सारी बातों को वापस ले लें.
Not just to by superior power take it back from the devil.
अपने सर्वाधिकार के द्वारा उसने उसे शैतान के हाथों से लिया, ऐसा नहीं.
But to legally retrieve what Adam had handed over to the evil one.
लेकिन हम पढ़ते हैं कि आदम ने उस शैतान के हाथ में जिन बातों को दिया था पूरे नियम कायदे कानून के साथ वो वापस ले पाए.
Adam surrendered without a fight.
आदम ने सारी बातों को युद्ध के बिना दे दिया.
But surrender he did.
और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया.
The devil carried it all away.
और शैतान सब कुछ खुशी खुशी लेकर चला गया.
Our beloved Savior, the second man, the Lord from heaven.
लेकिन हमारा अच्छा उद्धारकर्ता वो दूसरा पुरुष जो स्वर्ग से आया वो प्रभु है.
He took it to the great fight, the great battle of Calvary.
उसने कालवरी पर युद्ध को लड़ा.
And there he won back.
और उसने उस युद्ध में विजय को हासिल किया.
Everything that Adam had surrendered.
आदम ने जो सारी बातों को दे दिया था.
And the purpose of God.
और परमेश्वर का जो उद्देश्य है.
Which he explains to us in the prophetic scriptures.
जो वो भविष्यवाणियों में हमारे लिए प्रकट करता है.
Is as Zechariah says in chapter 6.
जैसा जकरिया ने उसके छठवें अध्याय में कहा था वैसे ही है.
That one day a man will bear the glory.
कि एक दिन मनुष्य को वो महिमा प्राप्त हो जाएगा.
It's wonderful, isn't it?
कितना आनंद का विषय, कितना महिमा का विषय.
It's a thrilling thing.
कितना हमें जोश दिलाने वाली बात.
That God is explaining to us through His Word how man fell from that first place that God had given him.
कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें यह सिखा रहा है कि हे मनुष्य तू अपनी पहली अवस्था में कैसा गिर गया.
And how God through Christ will restore all things so that ultimately one day a man once again has universal dominion.
कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को फिर से वापस उठा ले आता है और एक पुरुष एक मनुष्य एक दिन सारे बातों के ऊपर अधिकार को करेगा.
That's why the spirit of prophecy is the testimony of Jesus.
इसलिए भविष्यवाणी की जो आत्मा है वो यीशु मसीह का प्रकाशन या गवाही है.
The man.
एक मनुष्य का गवाही.
That's why when the writer to the Hebrews begins that wonderful epistle.
इसलिए इब्रानियों को लिखने वाला जब इब्रानी की पत्री को लिखता है.
The first thing he will do is show that man is superior to the angels in the purpose of God.
तो पहली बात वो जो दिखाता है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने स्वर्गदूतों से भी अधिकार रखने वाला होगा.
He has hardly begun the epistle.
उसने उस पत्री को लिखना शुरू ही किया था.
When he speaks about a man who has obtained a more excellent name than they.
एक पुरुष का वो स्मरण दिलाता है जिसको एक ऊंचा नाम दिया गया है.
He has done so by right of sonship. By right of sonship, it's an inheritance, so he must be a son.
इसलिए पुत्रत्व के द्वारा उसको ये सारी मिलने वाला है, इसलिए वो एक पुत्र है.
And God has now filled up prophecy in the last of these days. Where before he spoke to us by prophets, in the last of these days he's spoken to us in son.
प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बात करके इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है.
And he gives a description of him.
और वहां पर उसका एक वर्णन को हम पाते हैं.
And verse 4 says, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they.
पर चार में देखिए लिखा है और स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसे उसने उनसे श्रेष्ठ नाम प्राप्त किया.
You see the angel, the Hebrew people, the Jew, they set a lot of importance upon angels.
जो इब्रानी है वो स्वर्ग दूतों के लिए बहुत उनको ऊंचा स्थान था.
The law was administered by angels.
क्योंकि व्यवस्था स्वर्ग दूतों के द्वारा पूरा हो दिया गया था.
End of Hebrews 1 tells us.
और इब्रानियों के पत्र में हम इसको देखते हैं.
Are they not all spirits, flaming spirits?
क्या ये सब जलते हुए आत्माएं नहीं हैं?
Sent forth to minister unto those who are to be the heirs of salvation.
कि जो उद्धार के वारिस हैं, उनके उनके सामने वो सेवकाई को.
There was a ministry of angels to Israel.
इसलिए स्वर्गदूतों का इस्राएल के प्रति एक सेवकाई था.
Jacob saw it in Exodus, in Genesis 28.
और उत्पत्ति 28 में याकूब ने उस दृश्य को देखा.
A way cast up to heaven at Bethel.
उसने देखा कि एक सीढ़ी जो बेथेल पे स्वर्ग की ओर उठा.
Angels ascending and descending.
और स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं.
There was a great reverence for angels.
और स्वर्गदूतों के लिए उनके मन में एक बहुत बड़ा सम्मान की भावना थी.
Almost a worship of angels.
और इतना कि वे लगभग स्वर्गदूतों की आराधना करते थे.
And they didn't realize that God's purpose is for angels to be subject to men.
कि और वे इस बात को भूल गए कि परमेश्वर का उद्देश्य है कि हर जो स्वर्गदूत है वो मनुष्य के अधीन रहे.
So as he opens the letter to the Hebrews.
इसलिए इब्रानियों को लिखते समय वो इस प्रकार से कहता है.
The writer says, let me tell you about a man who's greater than angels.
कि ये मनुष्य जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं ये स्वर्गदूतों से भी उत्तम है.
He's got a more excellent name than they.
उसका उसको जो उसे उसे एक श्रेष्ठ नाम दिया गया जो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है.
Which angels can we name?
कौन से स्वर्गदूत को हम नाम दे सकते हैं?
We've named one of them.
हम एक का नाम हम जानते हैं.
Lucifer.
लूसीफर.
Michael.
Michael है. Jibrail है.
Gabriel. Those are the angels we can name.
ये स्वर्गदूतों को हम नाम दे हम जानते हैं.
If you were to take a Bible concordance or a dictionary.
अगर आप एक Bible dictionary लेंगे या concordance लेंगे.
And look at the names of those angels.
और उन स्वर्गदूतों के नाम को अगर आप देखेंगे.
What does Lucifer mean?
Lucifer का अर्थ क्या है?
Lucifer means the shining one.
Lucifer का अर्थ है जो प्रभात की जो शोभा है या चमकने वाला.
And when you check again and you look at Michael,
जब आप मिखाइल के बारे में देखते हैं,
who is like unto God,
जो परमेश्वर के सदृश है उसका नाम का,
Gabriel,
गब्रियल के बारे में देखते
हैं, the strength of God,
परमेश्वर की ताकत,
these are the names of these great angels,
इन महान स्वर्गदूतों के नामों का अर्थ ये है,
but a man has obtained a more excellent name than all of them,
लेकिन एक मनुष्य को इससे भी बढ़कर एक श्रेष्ठ नाम दिया गया है,
who is this man,
ये मनुष्य कौन है, ये पुरुष कौन है,
well. Look at verse 3 of Hebrews 1.
इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय तीसरे पद को देखिए.
If Lucifer means the shining one,
अगर लूसीफर का अर्थ है प्रकाशमय,
look at this man.
इस मनुष्य को देखिए.
Who being the brightness of his glory,
उसके महिमा का प्रकाश.
Michael means who is like unto God.
मिखाइल का अर्थ है जो परमेश्वर के सदृश समान है.
Look at the man in verse 3.
पद 3 में जो मनुष्य है उसको देखिए.
He is the express image of his person.
यहां पढ़ते हो उसके तत्व का परमेश्वर के तत्व का प्रतिरूप है.
Gabriel means the strength of God.
और गब्रियल नाम का अर्थ है परमेश्वर की ताकत.
Look at this man.
इस मनुष्य को देखिए.
He is upholding all things by the word of his power.
वो अपने सामर्थ के वचन के द्वारा सारी वस्तुओं को संभालता है.
He has a more excellent name than all of them.
इसका नाम तो सारे नामों से श्रेष्ठ है.
They have excellent names.
इनके बड़े श्रेष्ठ नाम है.
His name is more excellent.
लेकिन इस मनुष्य का इस पुरुष का नाम सर्वश्रेष्ठ है.
Because we can see who and what he is.
और क्योंकि हम जानते हैं कि वो कौन है.
The brightness of glory.
वो महिमा का प्रकाश है.
The express image of his person.
वो परमेश्वर का तत्व का प्रतिरूप.
Upholding all things by the word of his power.
अपने सामर्थ के द्वारा सारे वस्तुओं को संभालता है.
We could stop there.
हम वहां रुक नहीं करते.
We could say wonderful, there's a man greater than all the angels.
इसलिए हम इस प्रकार से कहते हैं कितने अद्भुत बात है स्वर्गदूतों से भी बढ़कर एक मनुष्य.
But when he had by himself purged our sins.
जब उसने अपने द्वारा हमारे अपराधों को क्षमा किया.
You know, the Lord Jesus Christ had the moral right to go back into heaven at any time he chose.
प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में किसी भी क्षण वापस जाने का नैतिक अधिकार था.
At any time during his life down here,
अपनी पृथ्वी में किसी भी क्षण,
the Lord Jesus Christ had the moral right to go home to heaven.
प्रभु यीशु मसीह के पास ये नैतिक अधिकार था कि वो स्वर्ग में जा सकते थे.
But he said himself, didn't he, in John 12?
लेकिन हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में वो अपने बारे में इस प्रकार से कहता है.
Except a corn of wheat fall into the ground and die,
जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर ना जाए,
it abides alone.
वो अकेला ही रहता है.
This man could go back to heaven at any time.
ये मनुष्य किसी भी समय स्वर्ग वापस जा सकता था.
But unless he goes back by means of the cross and the tomb, he will go back alone.
लेकिन जब तक वो कालवरी की क्रूस के द्वारा तो इस कब्र में दफनाया जाए बिना अगर वो चला जाता तो वो अकेला ही जाता.
But this is the man who is to become the captain of our salvation.
लेकिन ये वो मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने हमारा उद्धार का नायक होकर ठहराया.
He is the one who in the purpose of God is going to lead many sons unto glory.
यही वो पुरुष था, मनुष्य था, जिसके द्वारा परमेश्वर का वो उद्देश्य, जिसके द्वारा बहुत से पुत्र महिमा में प्रवेश करें.
He is the one who in the purpose of God is going to populate heaven with crores and crores of believers. Just like him.
ये वो मनुष्य था जिसके इसके द्वारा परमेश्वर की वो योजना पूरी हो जिसके द्वारा स्वर्ग उसके समान हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों विश्वासियों के द्वारा भर जाए.
The whole purpose of God is centered in the person of the Lord Jesus Christ and His work.
देखिए परमेश्वर के सारे उद्देश्य एक पुरुष एक व्यक्ति यीशु मसीह के चारों इर्द गिर्द में है.
And so the spirit of prophecy is the testimony of Jesus.
इसलिए ये भविष्यवाणी का जो जो आत्मा है ये उसके यीशु मसीह का प्रकाशन गवाही का प्रकाशन है.
The man who came into earth,
वह मनुष्य जो पृथ्वी पर आया,
made in the likeness of man,
वह मनुष्य के सदृश बन गया.
But he's the first of a new order of man.
लेकिन मनुष्य के क्रम में वो सर्व प्रथम स्थान रखता.
First man was of the earth, earthy.
पहला मनुष्य जो पृथ्वी पर मनुष्य होकर.
Second man, the Lord out from heaven.
दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया.
There was a first Adam.
एक पहला आदम.
But praise God, there was a last Adam.
हम परमेश्वर को धन्यवाद है अंतिम आदम के लिए.
And prophecy is the scriptural description of how God is going to bring a man back to the throne.
और जो भविष्यवाणी है ये परमेश्वर के उन सत्यों को पूरा करने वाली बात है कि कैसे परमेश्वर मनुष्य को सारा अधिकार के स्थान पर नियुक्त करेगा.
The purpose of prophecy is to glorify Christ.
भविष्यवाणी का एक ही उद्देश्य है कि यीशु मसीह की महिमा मिले.
And we will remember that when we become confused and frustrated because we're not sure who the kingdom of the north and the kingdom of the south and all these things are.
और ये सारी बातें जब हम अध्ययन करेंगे कि ये उत्तर का राज्य कौन सा है, ये दक्षिण का राज्य कौन सा है, बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं.
Sometimes we have an expression, at least in English, sometimes you can't see the wood because of the trees.
कई बार अंग्रेजी में ऐसे कहावत है, कई बार हम लकड़ियों को देख नहीं पाते क्योंकि पेड़ों के कारण लकड़ियों को देख नहीं पाते.
Don't let obsession with the detail obscure your view of Christ.
हम ऐसा ना हो कि हम जब अध्ययन कर रहे हैं बहुत सारी विवरणात्मक बातों के ज्ञान को समझने के चक्कर में हम यीशु मसीह को ही देख ना पाए.
The Lord Jesus is going to reign.
क्योंकि यीशु मसीह राज्य करने वाला है.
A man, he, the branch, says Zechariah, shall bear the glory.
हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य जो डाली है वो सारी महिमा को उठाए हुए हम देखेंगे.
Since Adam, no man has been able to bear the weight of the glory of dominion.
और आदम के बाद आज तक कोई भी मनुष्य परमेश्वर के जो सामर्थ्य जो सर्वाधिकार दिया उसके भार को एक भी मनुष्य उठा नहीं पाया.
The greatest Gentile monarch, Nebuchadnezzar, he became like a beast.
हम जानते हैं नबूकदनेस्सर जो सबसे ताकतवर सम्राट था वो भी इस महिमा में एक जानवर बन गया.
And we've only to look around the world today to see the men who are in power and to see how power and influence corrupts them.
और हम आज दुनिया के शक्तिशाली लोगों को देखिए उनका प्रभाव और उनकी ताकत उनको गिरा देती है.
But Zechariah says of this man,
लेकिन ज़करिया इस मनुष्य के बारे में ऐसा कहता है,
He shall bear the glory.
कि वो उस परमेश्वर की महिमा को उठाए रखेगा.
He doesn't just mean he will have it.
ये इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसे प्राप्त करेगा.
But he will bear it.
वो उसे उठाए रहेगा.
With dignity.
पूरे उसके गर्व के साथ
एंड राइटियसनेस
पूरे धार्मिकता के साथ
एंड ग्रेस
और पूरे अनुग्रह
ओ व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट विल बी व्हेन दैट ब्लेस्ड मैन बेयर्स द ग्लोरी
ओ कितना आनंद का क्षण होगा जब वो अनुग्रह से भरा हुआ पुरुष उस महिमा को उठाए रहेगा
गॉड विलिंग वी विल एंजॉय मच डिटेल ऑफ द प्रोफेटिक प्रोग्राम दिस वीक
परमेश्वर की सहायता से अनुग्रह के द्वारा उसके ऐसे महान सत्यों को हम इन आने वाले दिनों में सीखेंगे
बट लेट्स नॉट मिस क्राइस्ट
लेकिन इसके बीच में यीशु मसीह को देखना ना भूलें
बिकॉज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी
क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा भविष्यवाणी का जो आत्मा है
इज द टेस्टिमनी ऑफ जीसस
वो यीशु मसीह का प्रकाशन है
May God bless his wife.
परमेश्वर इन वचनों को हमारे जीवन में अनुग्रहित करके देगा